ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಸ್ಥಿತ ರಹನೆ ವಾಲೆ, ಅರ್ಶ್ ನಿವಾಸಿ, ಫರಿಶ್ತಾ ಸ್ವರೂಪ್ ಆದರಣೀಯ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಭಾಯಿಜಿ ಕಾ ಇಸ್ ಬೇಹದ್ ಕೆ ಹಾಲ್ ಮೇ, ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಲ್ ಮೇ ಹಮ್ ಜೋರ್ದಾರ್ ಕರ್ತಾಲ್ ಧ್ವನಿ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. भाईजी के परिचय में 1962 में ग्रेजुएशन करते समय बाबा ने आपको अपना बना लिया. लौकिक में 1968 में इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत थे. वर्तमान समय एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड के ट्रेनिंग में एक्टिविटीज देते हैं तथा साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग ऑफ राजोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यभार संभालते हैं. आपने विशेष रूप से पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत सुकुशलता पूर्वक कार्य करके पर्यावरण श्री 1992 ये पुरस्कार आसाम और गुजरात से प्राप्त किया है. भाई जी के लिए ताली बजाएंगे. पर्यावरण श्री 1992 ये पुरस्कार आसाम और गुजरात राज्य से प्राप्त किया है. बिहार में अनेक राज्यों में अनेक सेवा केंद्र स्थापन करने के निमित्त बने हैं. आपने अनेकानेक प्रदर्शनियों का इंडस्ट्रियल पीस प्रदर्शनी, बाल उत्तान एग्जीबिशन, युवा प्रदर्शनी आदि का नवनिर्माण करके सेवाओं को नई दिशा दी है. बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, स्मृति सो समर्थी. कहते जैसे स्मृति होती है वैसे ही समर्थ आ जाती है. भाई जी का जीवन, उनका पुरुषार्थ, विचार सागर मंथन, तपस्या और साधना देखते हुए कितना बाबा की स्मृति में रहते हैं, कितनी ऊंची स्थिति बनाई है और खुद भी समर्थ स्वरूप बनकर दूसरों को भी समर्थ दिलाते हैं. तो ऐसे भाई जी को हम नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप स्मृति सो समर्थी इस विषय पर हमको लाभान्वित कीजिए. आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. एक बार हम सब लोग उस रीति से भी ओम शांति बोलेंगे जैसा हम सब ने सुना है कि यज्ञ के आदि में सब ब्राह्मण वत्स मिल करके बाबा के साथ ओम की ध्वनि किया करते थे. अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा गहरा श्वास लेंगे, उस श्वास को निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे. वास्तव में ओम शांति ही यह महामंत्र है जो आज के विषय को स्पष्ट करता है. स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप, ओम शांति इस मंत्र में स्थित होने से स्मृति स्वरूप भी बन जाते हैं और बहुत काल का स्मृति स्वरूप का अभ्यास वो हमें समर्थी स्वरूप भी बना देता है. तो इसलिए ये स्मृति स्वरूप आज के समय के अनुरूप बहुत ही एक आवश्यक विषय है, क्योंकि विश्व में जो परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं, उसमें हमारा स्मृति स्वरूप होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो परिस्थितियां बदल रही हैं, भयानक होती जा रही हैं, विकट होती जा रही हैं, तो उन परिस्थितियों में हमारे बहने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है अगर हम स्मृति स्वरूप स्थिति में नहीं रहते। इसीलिए बाबा हम सब बच्चों को ये स्मृति स्वरूप का अभ्यास भी नित प्रतिदिन कराते हैं। और यह भी कहा गया है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। चूंकि परिस्थितियां बड़ी विकट हो रही हैं, तो इसमें स्वाभाविक है कि साधारण व्यक्ति के बड़े संकल्प जो होंगे वो कुछ कमजोर क्वालिटी के होंगे, प्रश्नवाचक रूप में होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या करें आदि आदि। और इस प्रकार से व्यर्थ और साधारण संकल्प बहुत अधिक चलते हैं आज की परिस्थितियों में। अब इन व्यर्थ और साधारण संकल्पों को किस प्रकार से हम समर्थ संकल्प बना करके, केवल संकल्प ही समर्थ न बनाए बल्कि समर्थी स्वरूप बन जाए, हमारे चाल चलन चेहरे वाणी सबसे समर्थी और समर्थी ही प्रदर्शित होती रहे, उसके लिए बाबा ने अनेकानेक युक्तियां भी बताई हैं। और कैसे उन युक्तियों के अभ्यास से हम विजयी बनते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, वह भी बाबा ने बताया है। उन्हीं बातों का ही आज हम कुछ मनन चिंतन करेंगे। समर्थी बदलने, स्मृति बदलने का जो अभ्यास है, ये वास्तव में शुरू हुआ ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार से। जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, हम सब लोगों ने बाबा की जीवन कहानी में पढ़ा है कि विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, बाबा ने देखा, विष्णु के भक्त तो थे ही थे बाबा, और जब अपने इष्ट देव का साक्षात्कार हुआ बाबा को, तो बस बाबा मंत्रमुग्ध हो गए, देखते ही रह गए। और जब ये आवाज आई कि अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं चतुर्भुज हूँ, विष्णु चतुर्भुज हूँ और तुम भी वही हो, तो ये बाबा ने सुना तो बस बाबा तो गहरे सोच में पड़ गए, क्या अर्थ है इसका, मैं कैसे विष्णु हो सकता हूँ। और अनेक अनेक प्रश्न भी बाबा की बुद्धि में आए, वो सब आपने जीवन कहानी में पढ़ा है। बाबा अपने लौकिक गुरु के पास भी गए, उनसे भी कहा, तो गुरु को तो कुछ मालूम नहीं था, बाबा ने तो सोचा कि गुरु ने शायद साक्षात्कार कराया है, लेकिन गुरु ने तो अपनी अनभिज्ञता प्रकट की कि नहीं भाई, मुझे ही साक्षात्कार नहीं हुआ है अभी तक, तभी तो मैं तुम्हें कैसे कराऊंगा। तो इस प्रकार से बाबा का तब से स्मृति परिवर्तन का अभ्यास थोड़ा बहुत शुरू होता गया, और धीरे 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 जैसे जैसे पार्ट खुलते गए, बस बाबा का स्मृति परिवर्तन, तो वो ही बाबा ने हम बच्चों को भी कराया। सबसे पहले कौन सी स्मृति का परिवर्तन कराया बाबा ने, बाबा ने पहला परिवर्तन तो यही कराया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा ने ये शरीर धारण किया है और इस शरीर के द्वारा इस सृष्टि नाटकशाला में आत्मा पार्ट बजा रही है। किसी को पुरुष का पार्ट मिला है, पति का पार्ट मिला है, किसी को स्त्री का, पत्नी का, बच्चे का, माता पिता का, अलग अलग पार्ट हम सब प्ले कर रहे हैं। ये स्मृति का परिवर्तन बाबा ने कराया। दूसरा, केवल इतना ही नहीं कराया, संपूर्ण लौकिक को बाबा ने अलौकिक में परिवर्तन वो करवाया, उस स्मृति का परिवर्तन कराया। जो लौकिक घर था कि ये घर तुम नहीं है, घर तुम आत्माओं का परम धाम है। भल ये लौकिक मात पिता हैं जो होते हैं, लेकिन आत्मा का मात पिता वो शिव बाबा है। इस तरह लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन बाबा ने कराया। और साथ ही साथ ये भी बताया कि सब दिन होतना एक समान, परिस्थितियां तो आएंगी, संसार में रहते हैं, कभी अच्छी परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति है। तो बाबा ने उसकी भी विधि बताई कि प्रतिकूल परिस्थिति अगर आती है तो आपदा को कैसे खेल के रूप में परिवर्तन कर दो। आपदा है, पेपर आया है, आज ये पेपर है, पेपर तो रहने के लिए थोड़ी आता है, पेपर चला जाता है। इस तरह पहले पहले बाबा ने अपना स्मृति का जो परिवर्तन करा लिख लिख के, वो सब आपको मालूम है, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा, जो भी पत्नी पुत्र पुत्री आदि आदि थे, वो सब का लिख लिख के अपनी स्मृति का परिवर्तन किया बाबा ने। और उससे फायदा क्या हुआ, जब स्मृति में ये पक्का बाबा के सेट होने लगा कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये पत्नी पुत्र पुत्रियां नहीं है, ये सब भी आत्माएं हैं, पार्ट बजा रही है, हर एक को आत्मा देखने का ऐसा अभ्यास हो गया बाबा का कि हम लोग, मुझे भी सौभाग्य मिला है साकार बाबा के साथ लगभग 6-7 वर्ष रहने का। तो बाबा से कई बार जब मिलते थे, बस बाबा आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, ऐसे बाबा कहते थे, हम सब खींच के बाबा की बाह में आ जाते थे और बाबा बस दृष्टि दी, हम सब भी आत्मिक स्वरूप में, विदेही स्वरूप में स्थित हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने अभ्यास, इतना चुंबक होता है ना, चुंबक के सामने कोई वो लोहे की चीज लाओ तो वो भी टेम्परेरी चुंबक हो जाती है, जब दूर हटाओ तो भले उसका चुंबक खत्म हो जाए, कम हो जाए, लेकिन उस समय तो वो आके एकदम चुंबक के साथ। तो बाबा ऐसा मैग्नेट था, हम सब आत्माएं जन्म जन्मांतर की विकारी आत्माएं, और वो लेकिन बस बाबा के सानिध्य में आते ही तुरंत विदेही हो जाते थे। तो ये स्मृति के परिवर्तन का अभ्यास, क्या अनुभव हो है, ये बाबा पहले ही परिचय में बच्चों को अनुभव करा देता था, क्योंकि बाबा कहता था कि अनुभव से बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है। सुनी हुई बात भूल सकती है, देखी हुई बात भूल सकती है, लेकिन अनुभव की हुई बात जीवन में छप कर रह जाती है। तो वो बातें तो हम सबके जीवन में छपी हुई हैं कि बाबा किस प्रकार से ये परिवर्तन का, स्मृति के परिवर्तन का अनुभव करा देते थे। और ये अनुभव जो है ना, क्या होता था, बिल्कुल संकल्प के लेवल पर होता था, मन के अंदर तक, ऊपर ही नहीं अंदर तक बिल्कुल जब अनुभव होता था, तो ये अनुभव जो है बहुत गहरा होता था। मुझे याद आती है एक छोटी सी कहानी की, एक भिक्षुक भिक्षा पात्र लेके एक राजा के दरबार में आया, कहा महाराज मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। हाँ हाँ लो, मंत्री को कहा राजकोष से लाके इसके भिक्षा पात्र में डाल दो। वो सोने चांदी हीरे मोती लाया, डाला, वो भरा नहीं। दोबारा गया, तीसरी बार, बहुत बार गया, लेकिन देखने में तो भिक्षा पात्र छोटा सा था लेकिन वो भरता ही नहीं था। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। राजा ने फिर बड़ा नम्रता से पूछा, महाराज इसमें जरूर कुछ रहस्य है, आप कृपया बताइए क्या रहस्य है। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज ये जो भिक्षा पात्र है ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और यहां खोपड़ी में इधर मन है, तो मन तो कभी भी तृप्त होता ही नहीं है। मन के अंदर एक संकल्प पैदा होता है, उसे तृप्त करो, चार और संकल्प का जन्म हो जाता है, चार संकल्प और पूरा करो, दस और संकल्प का जन्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है मन जो है वो चूंकि तृप्त नहीं होता है, ये भिक्षा पात्र उसी का प्रतीक है। तो इसका भाव क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि ये भिक्षा पात्र, हाँ ये मन जो है, क्योंकि भिक्षा ही मांगता है भगवान से, किसी से कोई ना कोई कामना इच्छा मनुष्य की रहती है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा है मन के हारे हार है मन के जीते, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। तो मन को जीतने की जो बात है ये, तो ये वास्तव में संकल्प जो स्मृति की बात है आज, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो स्मृति, हाँ संकल्प क्या है, एक यूनिट है, एक बिंदी है, एक संकल्प बिंदी, दूसरा संकल्प आया दूसरी बिंदी, तीसरा, तो ये बिंदियां किस शेप में सेट होती हैं, बस वैसी स्मृति बन जाती है। मानो ये बिंदी प्रश्नवाचक रूप में सेट हो रही है, क्वेश्चन मार्क में, तो वो स्मृति भी प्रश्नवाचक हो जाएगी, क्यों क्या कैसे, क्योंकि बिंदी एक यूनिट है संकल्प। तो इसीलिए ये संकल्प को हमें देखना है कि ये संकल्प किस रीति से हमारे पैदा हो रहे हैं, और संकल्पों को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने हम लोगों को क्या दिया है। जैसे ब्रह्मा बाबा को तो दिया अहम चतुर्भुज तत्वम, ऐसे हम बच्चों को क्या संकल्प बाबा ने दिया हुआ है सभी के लिए, हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये संकल्प हम सब के लिए है। अभी हमें शूद्र से बाबा ने ब्राह्मण बना दिया, तो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो ये जो संकल्प है इसको, स्मृति को हमें शक्तिशाली बनाना है, और जितनी ये स्मृति शक्तिशाली होती रहेगी उतना उतना हम अपने लक्ष्य की तरफ, फरिश्ता स्वरूप की तरफ, देवता स्वरूप की तरफ बढ़ते जाएंगे। और इसमें बढ़ने में हम सभी व्यवहारिक हैं, अपनी अपनी प्रवृत्ति में रहते हैं, काम धंधा करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या चीज रुकावट डालती है, हाँ क्या रुकावट डालती है, माया कहो, हमारे कमजोर संकल्प करो, वास्तव में ये जो है ये रुकावट डालती है। और ये पुराने संकल्प, कमजोर संकल्प जो आते हैं, हाँ व्यर्थ संकल्प जो होते हैं, माया और कुछ नहीं, हमारे ही संकल्प है। पेपर तो बाहर से आता है, समस्या बाहर से आती है, माया अंदर से आती है। कमजोर संकल्प तो मन में पैदा होते हैं ना, समस्याएं तो आएंगी जब तक संसार में है, तो पेपर आएंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि उसके रिएक्शन स्वरूप में हमारे माया कमजोर संकल्पों की श्रृंखला न लग जाए। इसीलिए इसमें हमें व्यर्थ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी ना, अब बाबा भी प्रवृत्ति वाला था, जब दादा लेखराज था बाबा तो एक आदर्शपति था, समाज का एक बहुत नामी ग्रामी व्यापारी था, बहुत हीरे जवाहरात का व्यापारी, पत्नी थे, बच्चे थे, बहुत ही जो समाज के अंदर जिसकी इज्जत होती है वो बाबा की थी। तो उस रीति से हाँ, फिर वो ही ब्रह्मा बाबा बना सारी स्मृति को परिवर्तन करके। कैसे बना? मुझे एक शिल्पकार की बात याद आती है, एक मूर्तिकार था, मूर्ति बड़ी अच्छी बनाता था पत्थरों से। तो सब लोग पूछा करते थे, अरे भाई इतनी बढ़िया मूर्ति कैसे बनाते हो आप, एकदम हूबहू। तो कहते मैं मूर्ति तो बनाता नहीं हूं, पत्थर जो लिया उसके बाहर जितना भी एक्स्ट्रा है, व्यर्थ है, वेस्ट है, उसे निकाल देता हूं, मूर्ति अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है। कितनी सहज बात है। ऐसे ही आज आवश्यकता यह है कि हमारे चारों तरफ भी व्यर्थ का आवरण काफी चढ़ा हुआ है, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय वेस्ट जाना आदि आदि, व्यर्थता काफी है। तो उस व्यर्थ को जितना हम निकालते जाएंगे तो हमारे अंदर ही जो फरिश्ता स्वरूप, जो देवता स्वरूप छिपा हुआ है ना, वो अपने आप प्रत्यक्ष होता चला जाएगा। तो इसीलिए आवश्यकता ये है कि उस व्यर्थ को हम धीरे धीरे से निकालते जाएं, और जितना निकाल जाएंगे उतना उतना हम मंजिल के करीब आते जाएंगे। संसार में वैसे कई परिस्थितियां होती हैं, कई बातें होती हैं, उन समस्याओं को तीन पार्ट में यूजुअली बांट देते हैं, आधी, व्याधि और उपाधि। यानी शरीर की समस्याएं, समाज की समस्याएं, धन की समस्याएं और रोग आदि, ये जितनी है आदि व्याधि उपाधि सब, लेकिन इनका उपाय क्या है? इनका उपाय है क्या, वो एक कहानी से स्पष्ट होता है। एक गुरुजी के पास ना एक व्यक्ति आया, उसने देखा पांच छह चेले बैठे हैं, गुरुजी कोई प्रवचन कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं बड़े तल्लीन होके। वो भी बैठ गया, वो भी सुनने लगा, अपनी कई बातें मन में उसके थी। इतनी देर में भूचाल आया, जमीन हिली, तो जहां सब बैठे थे वो सब भी हिलने लगा। वो एक छपरे के नीचे बैठे हुए थे, कच्चा सा वो था छत, वो भी हिलने लगी, कभी भी गिर सकती थी। तो सब लोग उठ के भागे बाहर, और भाई अर्थक्वेक आया, भूचाल आया, गुरुजी बाहर आओ। गुरुजी वहीं के वहीं बैठे रहे, सब बाहर, और बाहर से ही चिल्ला रहे हैं, गुरुजी आप भी बाहर आइए, ये कभी भी गिर सकता है, बहुत हिल रहा है। लेकिन वो शांति से वहां बैठे रहे, और जब थोड़ी देर के बाद भूचाल शांत हो गया तो सब लौट के आए। अरे गुरुजी आपको डर नहीं लगा? इतना तेजी से ये हिल रहा था, चारों तरफ इतने ये गिर गया, वो गिर गया, फलानी चीज, अब ये गिरता तो बहुत आपको चोट लग जाती थी। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा हम आपको बुला रहे थे, बाहर आइए आइए, आप नहीं भागे, आप नहीं आए। क्या नहीं, तुमने देखा नहीं, तुम भी भागे थे, मैं भी भागा था। कहां गुरुजी, आप तो वहीं के वहीं बैठे हुए थे। भाई अंतर सिर्फ इतना था कि तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अपने अंदर। और ये ही उस प्रश्न का उत्तर है कि समस्याएं आदि व्याधि उपाधि कोई आती हैं, उसका उपाय है समाधि। यानी अंदर हम अपने उतरते हैं अगर ना, तो बाहर हम उसको सॉल्व करने का अवश्य स्थूल रीति से प्रयत्न करें, लेकिन उसका वास्तविक लास्टिंग उत्तर जो मिलेगा सदा काल का, वो हमें अंदर की तरफ मिलेगा। तो इसीलिए मैं अंदर भागा, बाहर बहुत हलचल थी, लेकिन जब मैं अंदर भाग के स्थित हुआ, वो तो बहुत अचल स्थिति थी, वहां तो कोई हलचल नहीं थी। आप लोगों की आवाज भी कर रहे थे, मुझे तो कोई सुनाई नहीं दे रहा था भागने का, क्योंकि मैं खुद ही भाग के अंदर पहुंच गया, चला गया। तो आज आवश्यकता यही है कि जब भी कोई परिस्थिति आए इस यात्रा में, कौन सी यात्रा? स्मृति स्वरूप से समर्थी स्वरूप बनने की ये यात्रा है। स्मृति स्वरूप पुरुषार्थ है, समर्थी स्वरूप उसका रिजल्ट है, समर्थ बन जाना। तो इस यात्रा में कई पड़ाव है, कई प्रकार के, दिल्ली से कलकत्ता जाना हो तो बहुत स्टेशन पड़ेंगे, यहां से भी अब आप जाएंगे अलग अलग जगह, दिल्ली जो जाएंगे गए होंगे, बस कई शहर पड़ेंगे, अजमेर पड़ेगा, जयपुर पड़ेगा, आदि आदि। भले वहां रुके नहीं, रुक गए तो रुक गए, बस सी दृश्य देखते हुए आगे बढ़ते जाए। इसीलिए एक स्मृति स्वरूप बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम आगे बढ़ते जाएं, और जो परिस्थितियां आती हैं ना, तो हम अपनी स्वस्थिति को इतना शक्तिशाली बना लें कि परिस्थिति हमारे ऊपर वार न कर सके। परिस्थितियां तो सबके सामने आएंगी, हमने देखा ब्रह्मा बाबा के सामने भी बहुत परिस्थितियां आई, दादियों के साथ रहने का भी बहुत सौभाग्य मिला, बड़ी दादी के साथ, दूसरी और दादियों के साथ, वर्तमान समय भी। तो इस समय हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अपनी स्वस्थिति से हम उन परिस्थितियों को इतना नीचे कर दें, हमारी स्वस्थिति ऊपर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा बाबा थे, अब इतनी आयु थी, 93 इयर्स की एज थी, माउंट आबू में कितनी ठंडी पड़ती है, कई बार बाबा को मुरली चलाते चलाते वैसे खांसी भी आ जाती थी, इतना ठंडी के दिन। और वो, लेकिन बाबा ने अपने लिए क्या युक्ति रची हुई थी, बस बाबा के संदली के पास ही श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट का चित्र होता था, लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था, और बाबा खांसते खांसते, कई बार बाबा की आंखें भी गीली जैसी हो जाती थीं, हम लोगों को लगता था कि बाबा को जैसे बहुत कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन बस बाबा मुरली सुनाते खांसते हुए, फिर देखो बच्चे अभी तो ये शरीर भी पांच तत्वों का बना हुआ, तमो प्रधान हो गया है और आत्मा भी तमोगुणी है, अब हम सब सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, कल बाबा जाके ऐसा मिशनु कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, प्रकृति के पांचों तत्व भी सतो प्रधान होंगे, और ऐसी नई दुनिया में हम सब जा रहे हैं। वाह, बच्चों को परिस्थितियों के वशीभूत नहीं होके खूब खुश रहना चाहिए, कल हम ऐसी दुनिया के मालिक बनेंगे, महाराजा बनेंगे, महारानी बनेंगे। बच्चों को खुशी में ठगियां मारनी चाहिए, और बाबा ऐसे करके भी ना, कहां कुछ सेकंड पहले खांसी आ रही थी, और कहां खुशी में बाबा, वाह कल मैं जाके ऐसा बनूंगा, बाबा के चेहरे पर एकदम मुस्कान, खुशी। तो स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली बना लें, परिस्थिति आए कि परिस्थिति हम पर वार ना कर सके, वो ही हमें अपने लिए खुद ही, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अपनी अपनी हैं, अलग अलग हैं, हर परिस्थिति को हैंडल करने के लिए हमारे पास ऐसा स्वस्थिति रूपी टूल हो कि बस वो स्वस्थिति से हम उस परिस्थिति को पार कर ले। और जब जितना जितना पार करते जाते हैं, अक्सर करके क्या होता है, कोई परिस्थिति आती है ना, अक्सर करके हमारा स्वभाव हो गया है, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, उसने ये करा तो मुझे क्रोध आ गया, उसने ये, और बचपन से ही हम आदत डाल देते हैं बच्चों की। हाँ, माताएं भी बैठी है, याद करो जब छोटा बच्चा होता है ना, वो थोड़ा छोटा चलना सीखता है, गिरता है, थोड़ा चोट लगती है, रोने लगता है, घर में माताएं क्या करती है, वो उसको थोड़ा ले उठाया और जमीन को मारते हैं, देखो इससे तुझे चोट लगी, और उसको ये करके, और वो बच्चा भी देख के शांत हो जाता है। ऐसा होता है ना, वो अब जमीन तो वही है, बच्चा गिरा, लेकिन बच्चे के माइंड में हमने बचपन से ही डाल दिया कि तू गलत नहीं है, हमेशा दूसरा ही गलत है। तुझे अगर तकलीफ हुई है किसी चीज से, प्रॉब्लम हुई है, उसके माइंड में ये सॉल्यूशन डाल दिया कि यू आर नेवर रॉन्ग, अदर्स आर रॉन्ग, बस दूसरे गलत हैं, और ये जीवन भर उसका चलता रहता है। कोई भी परिस्थिति आती है वो दूसरे पर, हाँ जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, कौन सी, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे, आईने को देखते रहे। तो प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, लेकिन हम दूसरे को वो करते हैं, उसकी वजह से कभी आईने को साफ किया, कभी व्यक्ति को ब्लेम किया। तो ये ब्लेम गेम जो होता है, किसी भी व्यक्ति को ब्लेम करने का, ये हमें स्मृति स्वरूप नहीं बनने देता, क्योंकि स्मृति में दूसरा व्यक्ति आ जाता है, उसके कारण मेरी ये परिस्थिति हुई, मुझे ये नुकसान हुआ, मेरी इज्जत को ये बट्टा लगा। तो स्मृति में जहां पर निगेटिविटी आई, बस स्मृति स्वरूप नहीं बन पाते। इसलिए बाबा ने उसके लिए क्या कहा है, मनुष्य आत्मा अनेक गुण है आत्मा के, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान शक्ति, सब सातों गुण जो बताए हैं, उसमें भी सबसे बड़े से बड़ा गुण कौन सा बताया है बाबा ने, आत्मा प्रेम स्वरूप है। हम सब भी किसी ना किसी रीति से प्रेम वश खींच करके ही तो आ गए, बाबा का प्रेम, निमित्त दादियों का, दीदियों का, सेंटर इंचार्ज बहनों का, भाई बहनों का निस्वार्थ प्रेम, वो हमें यहाँ पर तक खींच लाया है। और ये प्रेम की वजह से क्या है, बस इस प्रेम में जो जितना धीरे 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 डूबता जाएगा ना, वो पार हो जाएगा। खुसरो, बहुत बड़े वो अमीर खुसरो होके गए हैं, उसने कहा है कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। प्रेम के दरिया में जो डूबा, ईश्वर का प्रेम का दरिया जो है बाबा का, जो इसमें डूब गया वो तो पार हो गया, और जो इस ईश्वर के दरिया को पहचान नहीं सका, दरिया है वो तैरने लगा, वो इसमें डूब गया, खत्म हो गया। तो वो पार, दुनिया वाले इस बात को नहीं समझते, लेकिन हम बच्चे अब जो समझने लगे हैं, हमें इस प्रेम की भाषा, तभी तो कहा है ना, ये ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो ये इस शब्द को पहचानना है, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण बाबा ने एक सावधानी हम बच्चों को और दी है। कौन सी वो सावधानी, ये है कि प्रेम स्वरूप बनो, सब आत्माओं को प्रेम दो, सहानुभूति दो, सबसे दुआएं लो, दुआएं देते रहो, सुख दो सुख लो, दुख किसी को न दो न लो, सब बातें बाबा ने बताई है। लेकिन इसके अंदर मुख्य बात क्या है कि पहचानने की दो शक्तियां बाबा ने बताई, वर्तमान समय बच्चों में दो शक्तियां विशेष होनी चाहिए। कौन सी दो शक्ति, एक निर्णय शक्ति कहें या परखने की शक्ति कहें, वो बहुत आवश्यक है। क्यों, क्योंकि अगर माया क्रूट फॉर्म में आती है, ऐसे क्रोध के रूप में आई, अहंकार के, ईर्ष्या के, घृणा के, द्वेष में, बदले की भावना के रूप में माया या कमजोरी आती है, तो हम इसे पहचान लेंगे, ये निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, माया का स्वरूप है, कमजोरी है हमारी, पहचान लेंगे। लेकिन अब माया इस स्वरूप में नहीं आएगी, अब माया बहुत ही मोहनी स्वरूप में आएगी, जिसे पहचानना भी बहुत कठिन होगा। इसीलिए उदाहरण के तौर पर जैसे माया का कोई स्वरूप, पावन ने कहा सबसे प्रेम करो, प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, लेकिन अति प्रेम भी अगर किसी से है तो क्या होगा फिर? मेरा ये तो रहा नहीं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब तक उसे अपने दिल की बात नहीं बताएंगे जिससे अति स्नेह अति प्रेम होगा, तब तक चैन नहीं पड़ेगा, तब तक उस व्यक्ति को सारे दिल का हाल नहीं कह देंगे, तब ये बात तो रही नहीं कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो इसीलिए अंतमति सो गति नहीं हो सकती। अंतमति सो गति के लिए ये आवश्यक है कि अंत में कोई याद ना आए, और अंत में याद वो ही व्यक्ति ज्यादा आते हैं, कौन? जिनसे या तो अति प्रेम होता है, स्नेह होता है, या कोई दुश्मनी घृणा ऐसी होती है जो कई बार तो पुश्तैनी चलती आती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी तक भी वो चलती आती है। तो इसीलिए अभी आवश्यक यह है कि किसी से अति स्नेह भी न हो, न किसी से पीड़ा हो, सबसे बराबर का हो। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, सुना है ना? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना तो किसी से अति स्नेह दोस्ती हो, दोस्ती की वजह से ही तो भाई भतीजावाद होता है। मिनिस्टर है आज, वो भाई भतीजावाद, अपने ही लोगों के लिए घर भरते हैं पैसा, और साधारण जनता बेचारी भूखो मरती है। तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये अपने को जरूर देखना है। क्यों? अक्सर करके क्या, हमारा तो यही छोटा सा संसार है, बाहर की दुनिया तो भूल जाती है। इसलिए अभी बाबा ने जो बताया है वो ये, हमें बाहर वाला कोई क्रोध करेगा हमें कुछ असर नहीं पड़ेगा, अज्ञानी है उसे क्या मालूम क्रोध नहीं करना। लेकिन हमारा बीके परिवार वाला ही अगर कोई क्रोध करेगा, कोई ऐसे मर्यादा विहीन बात करेगा, तो हमें एकदम वो आ जाएगा, हलचल में आ जाएंगे हम। अरे ये इतने साल पुराना, 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, ये भी अगर ये बात कर रहा है तो मैं तो अभी 5 साल पुराना ही हूँ, 10 साल पुराना हूँ, मेरे में भी अगर ये कमी कमजोरी हुई तो क्या बात हुई। तो इसीलिए किसी से भी ना तो किसी के मार्ग में कोई हमारे आगे बढ़ने के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। तो कई बार क्या, जिसके प्रति हमारी बहुत अच्छी भावना नहीं होती है तो वो सामने से भी आ रहा होगा तो हम नजर बचा के दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, ओम शांति नहीं करते, गुड मॉर्निंग नहीं करते। उससे क्या होता है, मुझे दादी जी की बात याद आ रही है, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी, एक बार क्लास पे उन्होंने कहा कि संबंधों में कटुता आने के मुख्य दो कारण। कौन से दो कारण? एक कारण है संबंधों में कटुता आने का, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। अरे कोई किसी के कान भर देता है, अरे वो फलानी बहन फलाना भाई तुम्हारे लिए ये बात बोल रहा था, बस वो बात हमारे दिल में घर कर जाती है, और जैसे ही उस बहन भाई को देखते हैं हमारे मन में वही बात गूंजने लगती है, उनसे दूरियां बनती जाती। तो इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग, और दूसरा कम्युनिकेशन गैप, वार्तालाप टूट जाता है, उनसे हम बोलते नहीं है, उनके सम्मुख नहीं जाते। मैं क्यों बोलूं पहले वो बोले, हमारा अहम जो है, झूठा अहम, वो एकदम सामने आ जाता है। इस कारण से जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना, तो परिस्थितियां मनुष्य को एकदम कमजोर कर देती है। तो क्या होना चाहिए, क्योंकि जैसे संकल्प होंगे हमारे अंदर तक बैठते जाएंगे। तो इसीलिए दादी जी कहते हैं कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, गलत बात सुनी हो किसी से, कोई भी बात जल्दी से अर्ली से अर्ली बैठ करके, आओ भाई जी, आओ बहन जी, मेरे मन में ये बात चल रही है, 5 मिनट में चाहता हूं आपस में हम बैठ लें। और 90% प्रॉब्लम तो उससे ही दूर हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का इमेजिनेशन होता है, उसकी कल्पना, फलाना बहन के मन में ये बात चल रही होगी, फलाने भाई के मन में ये, तो इमेजिनेशन जो होता है, उसकी परिकल्पना जो होती है, वो हमें मंजिल से दूर करती जाती है। इसीलिए हमें उसमें देखना है कि बस हम बैठ करके आपस में उस प्रॉब्लम को दूर करते रहें। तो ये जितनी बातें होती हैं ना, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी फिर वृत्ति बनती है, वृत्ति अंदर, वृत्ति क्या है, ये सबकॉन्शियस माइंड है एक तरह से। एक होता है मन, मन संकल्प करता है, आप सब जानते हैं मन का काम है संकल्प करना, लेकिन वृत्ति जो है वो अर्धचेतन मन है एक तरीके से, सूक्ष्म मन, वो बहुत बहुत शक्तिशाली होता है। अगर 10% साधारण मन की शक्ति होती है तो 90% वृत्ति की वैल्यू होती है, सबकॉन्शियस माइंड की वैल्यू होती है वो शक्ति। इसीलिए तो बाबा बार बार रोज रोज मुरली में कहता है तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, मुझे याद करो। जितना जितना ये बात हमारे सूक्ष्म मन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसती जाएगी, तो उतना उतना हमारा सबकॉन्शियस अंत मते सो गति के लिए बाबा तैयार कर रहा है। फिर अंत में जितनी ये बात घुसी हुई होगी, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, अंत में वो ही स्मृति आएगी। इसीलिए इसके अभ्यास में हम बैठे, भले हमारा मन भागे, कोई नहीं, आज 10 मिनट भागा, कल बैठेंगे तो 9 मिनट भागेगा, 1 मिनट फायदा हुआ, और अभ्यास करेंगे 8 मिनट भागेगा। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा, बाबा का भी मन भागता था, जब बाबा का मन भागता था तो बाबा कहता था क्यों भाग रहा है मन, तो बाबा ने मन को पत्र लिखा, उसकी कॉपी हम लोगों को दी गई थी, बाबा ने तो सिंधी में लिखा, बाबा ने मन को पत्र लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, और तुझे मेरे कहने पर चलना चाहिए क्योंकि मैं राजा हूं, लेकिन तू इतना शक्तिशाली हो गया, तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, और मैं आत्मा राजा होते हुए भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा, जो तू कहता रहा मैं करता रहा। भक्ति मार्ग में हम सब भी कहते हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम सभी का अनुभव है, भले बैठे यहां हैं, अभी मन कहीं भी भाग सकता है, जहां पर कोई काम हो, जहां बुद्धि का लगाव होगा, झुकाव होगा, वहां मन भाग जाता है। तो बाबा ने मन को पत्र, ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के साथ साथ मुझे कमजोर करती चली गई, और तुम दोनों ने मिलकर के, मन और बुद्धि ने मिलकर के मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर बना दिया कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में, सोमान में स्थित हो गया हूं, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तुम मेरे कर्मचारी हो। इसीलिए बाबा कहता है, पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा, रोज इनकी दरबार लगाओ। तो मन बुद्धि संस्कार की, आज कितना मेरे ऑर्डर में चले, कितना नहीं चले, तो पता चल देगा, तो अगले दिन और उन्हें टाइट किया जा सकेगा कि कल 80% मेरे ऑर्डर में चले, आज 85% चलेंगे, और फिर कल और आने वाले कल में 90%। इस तरह बाबा ने मन को वश किया, और फिर बाबा का मन इतना शक्तिशाली हो गया, अंतमते सो गति। तो ये जो स्थिति है लाने के लिए, क्योंकि फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड, देवी देवताओं के चेहरे के पीछे जैसा देखते थे ना, ऐसे अंतिम दिनों में मुझे एक सौभाग्य और मिला है। बाबा के साथ तो रहे हैं, लेकिन अंतिम दो दिन 17-18 जनवरी 1969, दो दिन पूरा मधुबन में बाबा के साथ रहने का सौभाग्य मिला, अंतिम दो दिन। और उन दो दिन में बाबा की कर्मातीत अवस्था, फरिश्ता स्वरूप स्थिति वो देखने का सौभाग्य मिला। तो वो स्थिति क्या थी? वो ही समर्थि स्वरूप की स्थिति थी। अभी तक स्मृति स्वरूप का सुन रहे थे, अब समर्थि स्वरूप की क्या स्थिति देखी बाबा की? जितना जितना आत्मा समर्थि स्वरूप बनती जाती है ना, उतना उतना दूसरे के मन के भाव को समझती जाती है। तो बाबा से पहले जब हम लोग मिला करते थे, बाबा कहते थे, हाँ बच्चे, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, क्या सेवा चल रही है, अब ये करो ऐसा करो, बताते थे। लेकिन अंतिम दो दिनों में 17 और 18 जनवरी को जब हम बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा से मिलेंगे, ये बात करेंगे, बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ऐसे दृष्टि देते थे, दृष्टि देके ही बाबा, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, मतलब मन का प्रश्न भी बता देते थे, उसका समाधान भी बता देते थे। ये है कर्मातीत स्थिति का एक बड़ा लक्षण, समर्थि स्वरूप स्थिति का लक्षण। किसी के भी मन के भाव को जान लेना, और जानना ही नहीं, उसका समाधान कर देना, उसका हल उसे दे देना। ये हमने 5-6 बार 17 और 18 जनवरी को बाबा से मिले 5-6 बार अनुभव किया। दूसरा, और ये स्थिति में क्या होता है, क्योंकि जैसा वृत्ति अंदर होती है ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं, मन जब एकदम स्मृति स्वरूप समर्थि स्वरूप हो गया, उसका रिफ्लेक्शन फेस पर भी आने लगता है। किस रीति से? ऑरा की फॉर्म में, आभा मंडल की तरह, जैसे देवी देवताओं के चित्र देखते हैं ना, तो देवी देवताओं के चित्रों के पीछे आभा मंडल दिखाते हैं, कोई येलो, गोल्डन येलो, पीला, सफेद, बड़ा शक्तिशाली, देखने में ही बड़ा शोभनीक लगता है। ऐसे हम सबके पीछे भी वो आभा मंडल है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको कैमरे से खींचा जा सकता है, स्पेशल कैमरा। मुझे भी वो रशियन साइंटिस्ट एक था, किरलियन, उसने उस कैमरे को इजाद किया, फोटो निकाला उसका, उस कैमरे का निर्माण किया। मुझे भी कुछ वर्ष पहले है, अनेक विश्व के देशों में जाने का सौभाग्य मिला है, लेकिन रशिया में खास सेंट पीटर्सबर्ग जगह है, जहां पर उनकी वर्ल्ड विश्वव्यापी इंस्टीट्यूट है, किरलियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी। तो वहां के डायरेक्टर को बेन जी ने सेंटर पर बुलाया, उसके साथ बात की, बताया हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के चेयरपर्सन आपके पास आ रहे हैं, आप टेक्निकली उनके साथ ये बात करना। सारा दिन हम लोग साथ रहे, उसने कई हमारे भी ऑरा निकाले, चेहरे का ऑरा, हर पार्ट का ऑरा होता है, अंगूठे का ऑरा अलग होता है, आंख का, कान का, मुंह का, और सबका ऑरा मिला के मुंह के चारों तरफ वो लाइट करता जाता है। तो अंत में उसने एक बहुत अच्छी बात बताई कि विश्व के सारे लोग मेरे पास आते हैं, भारत के भी अलग अलग मठ, संप्रदाय, धर्मों के लोग आते हैं, सब तरफ के मैं व्यक्तियों के ऑरा निकालता हूं, लेकिन जितना बढ़िया ऑरा इन ब्रह्मा कुमारी वालों का होता है, इतना अच्छा ऑरा किसी का नहीं है। देखो, ये हम सबके लिए गौरव की बात है ना। बाबा ने क्यों, क्योंकि हमारा मन शुद्ध बाबा ने किया है। मन से ऑरा बनता है। मन द्वापर युग में भी जो ऋषि मुनि होते थे सतो प्रधान, पहले बाबा ने भक्ति भी सतो प्रधान होती है, बाबा ने कहा जब भक्ति भी अपनी शुद्ध अवस्था में थी उनके सामने भी प्रकृति दासी थी। और वो हाँ, इसीलिए भगवान को भी ना कई बार प्रकृति का दूसरा रूप बोलते भगवान। हाँ, बड़ी अच्छी व्याख्या की है नेचर जो है, तो भगवान इसका क्या, भ भ से भूतल पृथ्वी, ग से गगन आकाश, व से वायु और अ का डंडा यानी आकाश और न से नीर, यानी ये पांच तत्वों पर भी कावि जो निर्माता है, भक्ति मार्ग में तो गलते हैं प्रकृति के पांच तत्व, वो भगवान है। तो बाबा ने अब प्रकृति को बताया है कि ये प्रकृति तो तुम्हारी रचना है, आप रचयिता हो। जब आप सतो प्रधान होते हो प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, जब आप रजो प्रधान होते हो प्रकृति भी रजो, अभी आप आत्माएं भी तमो प्रधान बन गई हो तो प्रकृति भी तमो प्रधान बन गई है, अब इसको भी सतो प्रधान बनाना है। इसलिए इस प्रकृति को भी रोज योगदान करो। अब ब्रह्मा बाबा वही करते थे, मुझे याद है 18 जनवरी को जब बाबा ने अंतिम मुरली चलाई, और अंतिम मुरली 18 जनवरी की रात्रि क्लास में भी सम्मुख सामने मुरली सुन रहा था, तो मुरली चला के उस दिन हाँ बाबा को एक बार भी ना खांसी आई ना कोई व्याधि हुई किसी भी प्रकार की, और बस मुरली चला के बाबा उठे अपने कमरे की तरफ चले और बाहर आके अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये अक्षर बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, उसी दिन ही बोले। और उससे पहले बाबा ने कहा था कि रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, बाबा ने पहले ही अनाउंस करा दिया कि सब लोग 7 बजे क्लास में आए और भोजन करके आए। तो ये कर्मातीत अवस्था की आत्मा की निशानी है, समर्थी स्वरूप आत्मा की निशानी है कि उसे पहले से ही आभास हो जाएगा कि अब इस शरीर में मेरा पार्ट पूरा हुआ, अब मैं आत्मा शरीर के इस पार्ट से छुट्टी लेकर आत्मा वापस जा रही हूं। बाबा को आभास हो गया था, जो जो बाबा के काम पेंडिंग रहे हुए थे, पत्र लिखने के, नक्की लेक का म्यूजियम वाली बिल्डिंग लेने का, वो सब बाबा ने 17-18 जनवरी को साइन करके पूरा करे। एक भी पत्र का उत्तर बाकी ना रहा, एक भी बिल्डिंग वो बाकी नहीं रही, सब काम, क्योंकि अंत में याद ही वो व्यक्ति वस्तु आती है जो या तो काम पेंडिंग पड़े हों, अरे मुझे ये करना बाकी था, वो काम याद आ जाएगा, व्यक्ति आ जाएगा, वस्तु वैभव कुछ ना कुछ याद आ जाएगा, फिर तो अंत में तो सोगति होगी नहीं। ब्यूटी तो तब है कि हम शरीर अपनी इच्छा से छोड़े। हाँ बाबा, जैसे भीष्म पिता में इच्छा मृत्यु का वरदान था, ब्रह्मा बाबा का भी हमने अपनी आंखों से देखा, भीष्म पिता में की तरह ब्रह्मा बाबा ने भी सारे कर्तव्य किए, लेकिन इस तरीके से किए जैसे बाबा को मालूम था आज मेरा अंतिम दिन है। इसीलिए रोज 9 बजे क्लास होती थी रात को, उस दिन बाबा ने कहा 7 बजे बाबा क्लास कराएगा, सब भोजन करके आए। बाबा को मालूम था अगर क्लास के बाद तो बाबा छुट्टी ले लेगा, उसके बाद तो कोई भोजन करेगा नहीं, तो इसीलिए पहले से ही बाबा ने ये सब कर दिया। उसके बाद बाबा आए, मुरली क्लास चलाई, बाबा ने कहा अच्छा बाबा छुट्टी लेता है, विदा लेता है, लेकिन उस दिन एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न कफ साफ करने की जरूरत पड़ी, कोई समस्या नहीं। अब वो इस बात का प्रतीक है, बाबा सर्व समर्थीवान बन गया था, कर्म भोग के ऊपर योग बल ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसे ही बन के हमें जाना है, आपको जाना है, हम सभी बच्चों को बाबा के साथ साथ परमधाम तो हम सबको इकट्ठे ही जाना है, उसके बाद सतयुग में भी हम सब बच्चों को आना है। तो इस कारण से अभी आवश्यकता ये है कि हम ऐसी स्थिति की प्राप्ति करें, और वो तब होगा जब हमारी स्वस्थिति शक्तिशाली हो, कोई भी परिस्थिति आए स्थिति को हिला न सके। एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया, दो हीरे लेकर आया, डायमंड बिल्कुल एक जैसे थे, कुछ भी फर्क नहीं था। तो राजा को के सामने दोनों रख दिए, राजा को कहा कि महाराज इसमें बताइए कौन सा असली है कौन सा नकली है। पूरे राज दरबार ने बहुत कोशिश करी वो कि बताए, कोई नहीं बता सका। तो एक राजा का मंत्री था, उसके लड़की बड़ी होशियार थी, उसने कहा कि बाहर राजन यहाँ रोशनी कम है, बाहर ले चलते हैं, बाहर रोशनी में ले आए, धूप में ले आए, वहां हीरे रख दिए। और उसने देख करके थोड़ी देर के बाद कहा छू करके कि ये असली है ये नकली है। उस आदमी ने स्वीकार किया कि हाँ ये तो बहुत, कैसे पहचाना तुमने? तो उसने बताया, हाँ सबने सुनी होगी कहानी, जो नकली हीरा था ना वो धूप में गर्म हो गया था, असली हीरा वैसा का वैसा। यानी परिस्थिति के वशीभूत हो गया वो नकली है। अगर हम भी परिस्थितियों के वशीभूत हो गए, भाई क्या करें, मैं चाहता तो नहीं था, क्रोध आ गया, मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए, ये कर लिया, नहीं, अगर वो हो जाता है परिस्थिति के वशीभूत हो गए, मैं आत्मा भी अपनी असली वास्तविक सत्व प्रधान स्थिति तक नहीं पहुंचा। इसीलिए बाबा का अंत में यही देखा, जब बाबा ने शरीर भी छोड़ दिया, वो गए, शरीर छोड़ा, दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते शरीर छोड़ा। 2 दिन तक बाबा का शरीर रखा रहा, 18 जनवरी की रात को छोड़ा, पूरा रात रखा रहा शरीर, 19 का दिन 19 की रात, 20 का सारा दिन 20 की रात। 21 को भी जब बड़ी दीदी पहुंच गए टूर से, तो दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा, ना कोई काला पड़ा, ना कोई उसमें दुर्गंध आई, ना किसी भी प्रकार का डिटोरिएशन हुआ। वो इस बात का प्रतीक है, मन जीते जगत जीत तो बाबा ने बना ही लिया, लेकिन प्रकृति जीते जगत जीत, 5 तत्वों को भी बाबा ने प्रकृति को इतना जीत लिया था। बस अभी हमें ये ही करना है कि मन के साथ साथ प्रकृति को भी जीतना है, और उसके लिए एक गुण विशेष जो बाबा कहते हैं अभी बच्चों को आवश्यक ये है, एक तो रहम दिल, किसी की बात को दिल में न रखे, क्षमा करते चले, जो रहम दिल होगा वो क्षमा करता चला जाएगा। हर आत्मा का संस्कार है अपना, तो रहम दिल बन के क्षमा करते चले, उसके लिए शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देते रहें, दुआएं देते रहें, और अपने लिए दुआओं का स्टॉक जमा करते रहें, एक मुख्य बात ये। और बाबा को सबसे प्रिय चीज कौन सी है, वो है सत्यता, इसीलिए उसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, सच्चे दिल पर साहब राजी। इसीलिए बस बाबा कहता है बच्चे सत्य बनो, सच्चे दिल पर साहब राजी। और बाबा को जब हम सच्चे दिल से अपने बात कह देते हैं, जो बाबा ने कहा है सुबह 4 बजे बाबा चक्कर लगाने आता है, और बच्चे उस वक्त जो वरदान मांगते हैं बाबा खुले दिल से उन्हें वो वरदान दे देता है। जब इतना इजी फैसिलिटी है तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं? गंगा के तट पर जाकर भी अगर एक बूंद पानी लिया और प्यासे के प्यासे रहे तो फायदा क्या? तो इसीलिए हम सबका लक्ष्य है समर्थी स्वरूप बनना। तो समर्थी स्वरूप के लिए एक ये आवश्यक है, रहम दिल की भावना, क्षमा की भावना, और इसके साथ सच्चा दिल। और तीसरी बात, देवताएं हमेशा श्रृंगारित दिखाते हैं, तो बाबा ने बताया सबसे अच्छा श्रृंगार कौन सा है, तीन चीजों का, ताज, तिलक और तख्त। ताज प्योरिटी का ताज इस समय धारण करें, तिलक आत्मिक स्मृति का, और बाप दादा का दिल तख्त पर विराजमान रहेंगे। तो ये जितने श्रृंगारित रहेंगे सतयुग में, हम उतना ही श्रृंगारित रूप में हमारी मूर्तियों की द्वापर युग में पूजा होगी और सतयुग त्रेता में तो चैतन्य में रहेंगे। और अंत में बाबा ने कहा कि हिम्मत का बस एक कदम बढ़ाओ। तो बाबा 100,000 कदम लेके खड़ा हुआ है, बस इसका मत सोचो मैं ये चाहता था करना, ये नहीं हुआ, अभी तक भी मेरा ये संस्कार नहीं गया, नहीं जाएगा। भगवान को हम बच्चे और हमें बाबा, इससे प्यारा और कोई नहीं। इसीलिए कहा है, बाबा आता था क्लास में फूल लेकर आता था। बड़ा अच्छा किसी ने कहा है, जिसके साथ मैं समाप्त करता हूं, कि फूल, सुना होगा आपने कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन में हार हो तो भी हम मुस्कुराते रहे कोई बात नहीं, आज हार हुई कल जीतेंगे ही। क्यों? क्योंकि हम और बाबा वी आर मेड फॉर ईच अदर, बाबा हमारे लिए, हम बाबा के लिए। ओम शांति, ओम शांति।